بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، کوئی آدمی اس دنیا سے صرف زندگی گزار کے نہیں جاتا.
No one has ever come that has just passed through this life.
بلکہ زندگی یا بنا کر جاتا ہے یا بگاڑ کر جاتا ہے.
Rather, either he makes his life or destroys his life.
اور بنانے اور بگاڑنے سے مراد اس دنیا کی زندگی نہیں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد کی بات ہے.
And by defining making or destroying means what happens to him after he dies.
بہت مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا یہ سوچتے ہوئے پاتے ہیں ہم کہ ارے ہمارا کیا، زندگی تو گزر ہی جائے گی، سختی میں بھی گزر جائے گی اور نرمی میں بھی گزر جائے گی، خوشحالی میں بھی گزر جائے گی، پریشانی میں بھی گزر جائے گی، زندگی کا کیا ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی.
Sometimes I'm sure you've heard or maybe seen people express this concern that, oh, you know, this time will pass, my life will finish. Either in good times or bad times, health or non-health, you know, wealth or poverty, time will pass, life will go on.
اور بڑے لوگوں کو بھی ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا کیا، ہماری تو گزر ہی جائے گی، فکر تو اب بچوں کی ہے.
And sometimes we hear, especially the elders, the older people, they say, oh, don't worry about me, you know, I'm older, I'm going to die anyway. Let's worry about the youngsters.
تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی زندگی گزر گئی تو آدمی کا کام ہو گیا شاید.
So some people think, oh, as long as I pass through, as long as I'm done, then that's fine.
گزرنے کا کوئی کام نہیں.
That's not true. Our job is just not to pass through.
زندگی کبھی بھی گزرتی نہیں.
You can't just pass through life.
یا بگڑتی ہے یا بنتی ہے.
Either you're successful or you're not.
ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی بگڑے نہیں بن جائے.
So we need to be concerned how I can make this life a success and not a failure.
اور ہمیں ساری انسانیت کی فکر کرنا ہے کہ ساری انسانیت کی زندگی بگڑے نہیں بلکہ بن جائے.
And we also need to be concerned about others, the whole humanity, how they can also be successful and not to be failures.
اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑا عجیب بنایا ہے کہ ان کو ان کی اپنی ذاتی زندگی کی فکر دیتے ہوئے ساری انسانیت کی فکر بھی دی ہے.
Allah SWT gave Muslims a special responsibility that while being concerned for their own lives, they also have to be concerned about others.
جیسے کہ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہونے والا پولیس والا جو ہے وہ اپنی تو فکر رکھتا ہی رکھتا ہے کہ کہیں اس کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کو ٹکر نہ ہو جائے، وہ سیف رہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کی بھی فکر رکھنی پڑتی ہے.
Just as a traffic cop, a policeman that's at an intersection, obviously he's worried about himself that he doesn't get involved in accidents and cars don't hit him. But his main responsibility is how he can conduct the traffic in such a way that they don't hurt others.
اور میرے دوستو، زندگی کا بننا جو ہے یہ ہمارے حساب سے نہیں ہوتا.
And to be successful in life, it's not according to our wills and desires.
جو زندگی کا بنانے والا ہے اس کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے اس کو.
So we have to analyze success based on the definition defined by the Creator.
اور زندگی کا بگڑنا بھی ہماری سمجھ کے اعتبار سے نہیں ہے.
And similarly, failure in this life is not according to our understanding.
وہ تو اس کے بنانے والے نے بگڑنا جو طے کیا ہے اس کا، اس سے وہ بگڑتی ہے.
So failure is defined by the Creator of life.
دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا پورا ہونا یہ زندگی کا بننا نہیں ہے.
Just to fulfill your necessities in this life doesn't mean you've been successful.
اور دنیاوی ضرورتوں کا انسان کے پورا نہ ہونا یا ان کا پھنس جانا، رکاوٹیں اس میں آ جانا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ زندگی بگڑ گئی.
And to be not to be able to fulfill your necessities or to have issues in fulfilling your necessities does not make you a failure.
اگر دنیاوی ضرورتوں کا آدمی کے پھنس جانا، رک جانا یہ ناکامی تھی تو حضرات صحابہ سب سے زیادہ ناکام تھے.
If we define success or failure as that not being able to fulfill your basic necessities, then we can say that the Sahaba Kiram were failures.
امہات المؤمنین ازواج مطہرات ان کے گھروں میں دو دو مہینے تک چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی وہ سب سے زیادہ فیلیئر تھے.
We find in the lives of our mothers, the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that there used to be days to pass by, sometimes months would pass by, that they had no fire in their house to cook food.
جن کے پاس کبھی دو کپڑے نہیں جمع ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ فیل تھے.
And someone who had no clothes to wear.
بلکہ اگر کسی کے پاس دو ہیں تو ایک دوسرے کو دیتا تھا تاکہ وہ ستر چھپا لے اور ایک سے اپنا وہ ستر چھپا لیتا.
But in fact, if someone had two pieces of clothes, they would give one to someone else so they can use that and then they would supply someone.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی.
Someone asked حضرت عبداللہ ابن مسعود, can you pray without a topi, a cap?
وہ ناراض ہو گئے.
He got mad.
کہنے لگے, تم ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہو جس پر ایسا وقت گزرا ہے جس پہ تم ٹوپی کی بات کر رہے ہو, یہاں کرتا نہیں تھا پہننے کو.
He said, you're asking someone who not only had no cap, he had no clothes to wear, he had no shirt to wear.
اگر ہمارے پاس دو چادر ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو دینا ہوتا تھا, ایک خود لپیٹنا ہوتا تھا, وہاں سر کو لپٹنے کو کہاں تھا اس وقت.
He said, well, we lived through a time when if you had two pieces of cloth, we would tie one in the bottom, we would give to the others to fulfill their necessities. We didn't worry about, you know, worry about covering our head.
مگر ان کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا بغیر ٹوپی کے بھی پڑھنا چاہیے.
That doesn't mean that we should, you know, we should pray without a topi. No, that's not what he said.
وہ آداب میں سے یہ ہے کہ ہونا چاہیے.
It's part of the etiquette that yes, we should cover our head when we pray.
اور آداب میں سب سے بڑا آداب اللہ کا ہے.
And the most respect we should give is to Allah.
اگر اللہ پاک کے ساتھ بے ادبی جائز ہے تو پھر سب سے ہی جائز ہے.
So if we're not being courteous and respectful to Allah subhanahu wa ta'ala, then how can we be respectful to others?
مسئلہ الگ چیز ہوتی ہے.
You know, to give a fatwa is different. The masala is like
وہ ایک خاص کنڈیشن میں ہوتا ہے,
it depends on the
شرط کے درجے میں ہوتا ہے,
depends on different حالات.
ویسا نہیں ہے.
But that's not the case.
مگر یہ بھی نہیں ہے کہ بے ادبی کی اجازت ہو جائے گی.
But that doesn't mean that we, you know, we're allowed to be disrespectful. No.
غرض یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے پاس کھانے کی بھی تنگی تھی, پہننے کی بھی تنگی تھی, رہنے کی بھی تنگی تھی, اور دوسرے حالات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے زیادہ اس دنیا کے محروم رہے ہیں ایک عرصے تک.
Point being is that the Sahaba Kiram had lack of food, lack of clothes, lack of necessities for a long time. So that should not be the criteria for success.
اور بہت سے اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے.
And many Sahaba Kiram passed away onto the next world in this condition.
کچھ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ شروع میں ان پر یہ حالات رہے, بعد میں نہیں رہے.
But there were some that initially they had some tight circumstances, but later on they improved.
مگر ان کا عجیب معاملہ یہ تھا کہ وہ پہلی حالت کو زیادہ پسند کرتے تھے.
But they would always refer to that initial condition, they would prefer that initial condition.
اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو پہلی والی حالت میں ہی رہتے تھے سہولت ملنے کے باوجود.
And there were many who, even though they had the means, they would still live according to the criteria of the earlier times.
وہی زہد, وہی دنیا سے بے رغبتی, وہی قناعت, وہی چھوٹی چیز پہ راضی رہنا.
That same characteristics of being content with little and being you know, sufficing with your necessities without being extravagant.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سالن کے اندر گھی پڑا ہوا ہو اس کو دو سالن بولتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ used to say that salan, that something that
curry,
curry, that curry that had oil, you know, fat. He would say, consider that two separate curries.
کہتے کہ گھی خود ہی ایک سالن ہے.
Because you say fat itself, oil itself.
پھر اس کو دوسرے سالن سے کیسے ملایا جائے گا؟
Yeah, oil itself is another curry.
اور دو سالن حضور پسند نہیں کرتے تھے.
And Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would
not. اسے وہ کھاتے نہیں تھے اگر تیل ہے تو.
That's why Hazrat Umar Ghulam would not eat something that they
اگر وہ گھی کھا رہے ہوں تو پھر سالن نہیں کھاتے تھے وہ.
That if someone was eating oil, then he would not eat the other curry.
ویسے زندگی گزاری آخر تک.
And that's how we spent his life till the end.
اس دنیا میں کچھ مل جانا دنیاوی لین کا یہ کامیابی نہیں ہے.
So to receive any worldly things is not a criteria for success.
اور نہیں ملنا یہ ناکامی نہیں ہے.
And to not receive things is not a criteria for failure.
دونوں میں جس حالت سے بھی آدمی گزرے, یا زندگی بنا کے گزرتا ہے یا زندگی بگاڑ کے گزرتا ہے.
And both ways you can be a success or a failure irrelevant of whether you have the worldly means or not.
زندگی کا بننا کیا ہے میرے دوستو؟
How do you define being a success?
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے سے خوش ہو جانا.
Allah is happy with someone.
اور زندگی کا بگڑنا کیا ہے؟
And how do you define failure?
اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے ناخوش ہو جانا.
Allah is not happy with someone.
aur Allah taala ka khush hona hamare haath mein nahi.
And to have Allah happy with us is not up to us.
Jaise mera khush hona aapke haath mein nahi.
Just as for me to be happy with you is not up to you.
Aapka khush hona mere haath mein nahi hai.
And for you to be happy with me is not up to me.
Zyada zyada jo khushi ke asbab hai wo ikhtiyar kiya ja sakte hain, magar zaruri nahi hai ki uska natija bhi murattab ho.
The most we can say is we can use the means to make someone happy, but we still don't know if someone's happy or not.
बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप किसी के साथ सलूक करते हैं वो फिर भी नाराज रहता
है आपसे. Nice to somebody, but they're still not nice to you.
बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप सलूक नहीं करते फिर भी उससे खुश रहते
हैं. And sometimes you're mean to somebody, but they're nice to you.
किसी से आपको तकलीफ पहुंच गई वो आपको खुश करने के वास्ते सलूक कर रहा है आप मानते नहीं.
If someone has hurt you, now they're trying to be nice to you, but still, you're not being nice to them.
आदमी की औलाद होती है, वो उसके साथ कोई सुलूक नहीं कर रही होती है, फिर भी वो खुश होता है उनके साथ.
If someone has children, even though they're not nice to the parents, but still, the parents, they're nice to the children.
मखलूक में ये बात है कि हम किसी की खुशी और नाराजगी अपने हाथ में नहीं रखते, तो वो तो खालिक है. वो कहाँ से किसी के कब्जे में?
So if we give this example from makhluk that they cannot, you don't know who's happy with someone, so how can we refer that to the khalik?
इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मसला है कि उनका खुश होना उनके चाहने पर मौकूफ है.
So it's a very sensitive issue is that for Allah to be happy, it has to be based on His condition.
तो वो जिस चीज से खुश होते हैं बस उसी से खुशी होगी उनको.
So whatever things make him happy, that is what we should strive for.
और वो जिस चीज से नाराज होते हैं उससे नाराजगी हो जाएगी.
And whatever things make him displeased, that we should stay away from.
उसके बगैर आदमी की जिंदगी बनती नहीं.
And without that, you cannot be a success.
उसके बगैर इसलिए नहीं बन सकती कि जिससे वो खुश होंगे उसकी बनाएंगे.
Because you won't be successful unless you follow his rules.
जिससे वो उनके हाथ में है बनाना जिंदगी का.
Because it's up to him to make it successful for us or not.
और बिगाड़ना भी उनके हाथ में.
And it's up to him to make it successful.
अगर वो नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाती है.
Because if he doesn't make a success, then automatically you're a failure.
जब वो किसी को बनाते हैं तो उसको फजल कहते हैं.
If someone is a success, it's called fazl.
जब वो किसी को नहीं बनाते हैं तो उसको अदल कहते हैं.
So if someone was not happy with anybody, then it's called being fair.
जिसके साथ अदल करते हैं वो मुसीबत में ही जाता है.
If someone was fair with anybody, then he's actually a failure.
क्योंकि मुसीबत में जाने वाला महरूम होता है नियमतों से.
Because anyone who's in trials and tribulations is devoid of any rahmat of Allah.
और जो महरूम है वो पहले से ही महरूम है.
And whoever is devoid, who doesn't have anything, then that is what the.
इसलिए महरूम को अगर कुछ भी नहीं दिए तो वो अदल ही है.
So if someone doesn't have anything and you don't give anything more, he still has zero.
अगर नहीं है उसके पास और आपने कुछ दे दिया तो वो फजल है.
If someone doesn't have something and you give him something, then he has nothing. You give him something.
इसलिए मखलूक के पास पहले से ही कुछ नहीं है.
So because makhluk has nothing at all.
इसलिए जब वो नियमत नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली मखलूक मुसीबत में आई जाती है.
So if someone doesn't have anything and you don't give him anything else, then obviously he's already in a failure.
इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है चूंकि इंसान की कामयाबी नाकामी और वो खुश होने पर देते हैं. इसलिए अगर वो खुश होंगे तो काम जिंदगी बनेगी, अगर वो खुश नहीं होंगे तो जिंदगी नहीं बनेगी.
That's why because success and failure is in the hand of Allah Subhanahu wa Ta'ala, if he gives us the means to be successful, then we are successful, otherwise we're not.
अब हर चीज अल्लाह के हाथ में है ये समझाते हैं पैगंबर.
And to understand everything is in the control of Allah Subhanahu wa Ta'ala, that is given to us by the prophets.
aur aakhir mein imam ul anbiya aqae namdar hazrat muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne bhi yahi samjhaya.
And at the end, the final messenger sallallahu alaihi wasallam, that's the same lesson he taught us.
Allah tbarak wa taala ki qudrat ka aur Allah tbarak wa taala ke kaamon ka aur tauheed ka samjhana isiliye hota hai ki bande par ye baat khul jaye ki tumhari puri ki puri baaton ka taalluq, kamyabi ka taalluq, maqasid poore hone ka taalluq, zindagi banne ka taalluq उनके चाहने से है चूंकि उनके हाथ में है सब कुछ.
To understand the concept of tawheed and the characteristics of Allah Subhanahu wa Ta'ala is to understand our success and failure is in pleasing Allah Subhanahu wa Ta'ala, and if we make him happy, inshallah Allah will make us happy.
और अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना उन असबाब के पीछे जो अल्लाह पाक नजर नहीं आते, तो जो चीज नजर आती है उसके पीछे वो होते हैं. अब इंसानों की जिम्मेदारी ये होती है कि उस पीछे पर नज़र रखना, जहाँ पर वो हैं, जहाँ से वो कर रहे हैं, और जो नज़र आ रहा है उससे नज़र हटाना.
Because we can't see Allah Subhanahu wa Ta'ala, we have to be able to recognize him. And that is the gift given to us by the prophets, to recognize the hand of Allah Subhanahu wa Ta'ala in every action that we see.
जितनी दुनिया में चीज़ें हैं और उन चीज़ों से जितने काम हो रहे हैं उसमें से चीज़ कुछ भी नहीं करती.
the many things that we see, and you know, we see the effects of different things, you know, their physical and their physiological effects, that the inherent quality is not in that thing.
There
was an elder and there was someone walking with him.
Allah tabarak wa ta'ala ke yaad rakhne ko mushahide haq kehte hain.
To remember Allah subhanahu wa ta'ala is called mushahide haq.
Aur Allah ke alawa kisi cheez ke yaad rakhne ko dhyan karne ko mushahide batil kehte hain.
And to remember anything other than Allah subhanahu wa ta'ala is called mushahide batil.
Aur batil ka matlab galat.
Batil means wrong.
To unhone kaha ke hazrat ab ye deewar hum dekh rahe hain. Unhone apne ustad se pucha ye deewar hum dekh rahe hain.
So the student asked the teacher, you know, teacher, sir, you know, we see the wall.
कहने के अब ये दीवार को दीवार है बल्कि मैं देख रहा हूँ ये बातिल कैसा हुआ ये तो हक है कि ये दीवार ही है जो मैं देख रहा हूँ.
He said, how can we say this is wrong because I see a wall? Why can we say this is not a wall?
ये मुशाहदे बातिल कैसा हुआ?
This is, you know, this is something I see. This is something my senses have observed and my eyes say this is a wall. So how can I say my eyes are wrong that this is a wall?
उन्होंने फरमाया कि हक ये है कि दीवार खुद से नहीं खड़ी रह सकती.
So the teacher answered, the reality is that the wall cannot sustain itself.
उसको तो किसी ने खड़ा किया हुआ है.
Someone is sustaining the wall.
तो जो उसको पकड़ के खड़ा हुआ है उसको आप नहीं देख रहे हैं और जो उसके जो नहीं पकड़ा हुआ है जो खड़ा हुआ है उसको नहीं देख रहे हैं बल्कि जो नज़र आ रहा जो कुछ नहीं कर सकता जो ठहर नहीं सकता अपने से उसको देख रहे हैं. तो ये बातिल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ?
Someone is sustaining the wall, but that someone sustaining the wall is unseen, Allah subhanahu wa ta'ala. So that power, you don't see the power of the one sustaining the wall. You just see the wall itself. You just see the object that is the direct object of the power of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't see Allah subhanahu wa ta'ala. So that in that case, then your, you know, what you see, your power of observation is not correct.
Quran Pak mein hai, Allah ne farmaya ki Allah Pak har shay ka qayyum hai. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Wo diwar ka qayyum hai. Qayyum ke manate pakad ke rehna, hold karke rakhna. To wo diwar ka qayyum hai, wo aapko nazar nahi aa raha. Aur jisko thehraya ja raha wo dekh rahe hain aap, to galat to dekh rahe hain, ye farmaya.
One of the names of Allah subhanahu wa ta'ala is Qayyum, he who holds things fast, even in Ayatul Kursi. So to make that comparison is that we see the wall, we see Allah subhanahu wa ta'ala holding up the wall, but we don't we see the wall, the object that Allah is holding up, we don't see Allah subhanahu wa ta'ala. So we don't see the one who doing the action, we just see the object that the action is done upon.
हम समझते हैं कि छत उसके नीचे हम हैं और छत हमको बर्फ से पानी से सर्दी से बचाई हुई है.
We see that the roof is, we are under the roof and the roof is protecting us from the snow and the rain and other objects.
और यही गलत है.
And that's wrong.
खुद छत को अल्लाह तबारक व तआला ने ठहराया हुआ है.
Because Allah is holding the roof.
छत तो ना अपनी तरफ से ना पानी से रोक सकता किसी को, ना हवा से रोक सकता, ना साया दे सकता, ना धूप से रोक सकता, कुछ नहीं. छत का कोई काम नहीं है.
Because the roof by itself can't do anything. The roof by itself can't protect us from the rain and the elements and the snow and the wind. It itself can't do anything. Allah is making it do it.
अगर अल्लाह पाक उसको कायम न रखे तो वो खुद ही नहीं रह सकता, तो वो खुद ही नहीं रह सकता, तो दूसरे को क्या बचाएगा वो?
If Allah did not hold the roof up, then it would not be able to sustain itself. So if it can't sustain itself, how can it help others?
अब हजार चीजें हमें नजर आ रही हैं बैठे हुए होने की हालत में.
So we see thousands of things that are static.
और हजार चीजों के हजार काम नजर आ रहे हैं.
And we see those thousand things doing things.
अब हमारे सामने माइक है वो एक काम कर रहा है.
We see this microphone working.
लाइट है वो एक काम कर रही है.
We see the light working.
पर्दा है वो एक काम कर रहा है.
We see the curtain working.
कारपेट है वो एक काम कर रहा है.
We see the carpet.
उसके नीचे जमीन है वो एक काम कर रही है.
We see the earth under the carpet.
जितना भी नजर आए.
Whatever we see,
मखलूक जबी चाहे अकल वाली हो या बेअकल हो.
The things that we see, whether animate or inanimate.
जानदार हो या बेजानदार हो.
Whether it has life or no life.
उसमें जो काम नजर आता है वो उसका नहीं होता.
That thing that it does is not inherent in that object.
चीज में काम नहीं है.
There's no specific quality in anything.
काम तो अल्लाह का काम है.
The effect is put in there by Allah.
ये मतलब है करने वाली जात अल्लाह की है.
That's what it means when we say that Allah does everything.
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर मौके से ये बात याद दिलाई है मगर हमारा जहन नहीं बनने से जाता नहीं है.
And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam reminded us about this throughout our lives. But our mind, you know, does not go towards that reality.
जब हम रात में सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं,
when we go to our bed to sleep,
तो बज़ाहिर ये होता है कि साहब अब थक थका के काम से फारिग होके आ गए, अब अपना ठिकाना बिस्तर है, हमने बिस्तर से ठिकाना लगा लिया.
So now we're thinking, oh, I've had a long day and I'm tired. I'm just going to lay down. I'm going to go to sleep.
अब हम ये समझते हैं कि बिस्तर ने हमें ठिकाना दिया हुआ है और हम उसपे आराम कर रहे हैं.
So we're thinking that the bed is sustaining me and it's supporting me.
और हदीस में क्या बताया गया?
What does the hadith say?
कि या अल्लाह मैंने अपनी पीठ आपको लगाई.
Ya Allah, I've turned my back to you.
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. Ya Allah, मैंने अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई, मैंने अपनी पीठ आपसे लगाई है.
We're seeing in that dua that we should read, inshallah, you know, every night, it's part of the etiquette of sleeping, that Ya Allah, I've turned my back to you. I'm resting my back on you. Not necessarily on this bed, but towards you.
क्योंकि पीठ को सहारा देना और किसी को आराम पहुंचा देना, थकान उसकी दूर करने के लिए उसको आराम का काम करना, ये बिस्तर का काम नहीं होता, ये तो उसका काम है.
So in order to support a person's weight and to give them the quality of comfort and to make them sleep, it's not the quality of a bed, it's the quality of Allah Subhanahu wa Taala who made that bed.
जब हम लेटते हैं तो अपना मुंह किधर होता है?
So when we sleep, where are we looking?
छत की तरफ होता है.
Towards the sky.
अल्लाह हुजूर फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं अल्लाह मैंने अपना मुंह आपकी तरफ किया.
But Allah, Prophet صلى الله عليه وسلم in this dua, Ya Allah, I've turned my face towards you.
وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ.
That I've turned my face towards you, not towards the roof.
और हम ये समझ रहे हैं कि हमने अपने आप को सोने से, हम सोने में जा रहे हैं.
But we're thinking,
आराम कर रहे हैं.
Now I'm going to rest.
और शुरू में क्या कह दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अपनी जान आपको दे रहा हूँ.
But in the beginning of this dua, Prophet صلى الله عليه وسلم saying, I have given my life to you.
أَسْلَمْتُ نَفْسِي.
अब
अंदाजा कीजिए कि एक एक दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तौहीद समझाई है, सिखाई है. हमारा ज़हन काम नहीं करता क्योंकि उसकी मशक़ें नहीं हुई.
And if we analyze these duas, every dua is turning us towards Allah Subhanahu wa Taala. But our intellect is limited and we don't understand the wisdom behind all these duas.
हम समझते हैं कि अपने आँखों से हम देखते हैं.
We think we see through our eyes.
आँखें कहाँ देखती हैं भाई?
Eyes do not see.
आँखों से दिखाया जाता है.
We use the eyes to see.
जुबान से बोलते हैं ऐसा समझते हैं हम.
We think we talk to our tongue.
जुबान से नहीं बोलते हैं.
No, we don't talk to our tongue.
जुबान का काम बोलने का नहीं है.
Tongues do not talk.
अंतकन अल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ले शय. जब क़यामत में लोग कहेंगे कि तू क्यों बोल, सारे आज़ा क्यों बोल रहे हैं, तो कह रहे जिसने जुबान को बोलना दिया था आज हमें उसने बोलना दे दिया. पहले वो जुबान से बुलवाते थे, अब हाथों पैरों से बुलवा रहे हैं.
One of the characteristics of the day of judgment is that the parts of the bodies will speak, and they will say that Allah has given us the power to speak. That Allah who gave the power of the tongue, you know, others to able to speak, He's given us the power to speak.
बोलना ज़ुबान का काम नहीं है.
Tongues do not talk.
उलमा ने लिखा है कि अगर ज़ुबान का काम बोलने का है, तो फिर ज़ुबान को एक ज़ुबान होना था.
But if that is the case, then tongues should have tongues.
फिर उसके साथ सलसल होता वो ला इलाहा इल्लल्लाह हमेशा चलता, उसको एक उसको एक उसको एक उसको एक.
And that would go on infinitely. That they would have something, they would have a tongue, they would have a tongue.
ज़ुबान से कहलवाते हैं अल्लाह पाक.
Allah Subhanahu wa Taala uses the tongue for us to say words.
कान से सुनवाते हैं, हमारे कान नहीं सुनते, वो गड़े में क्या सुनना है?
Allah Subhanahu wa Taala does not, the ears do not hear. He uses our organs of the ears to hear.
तो वही सुनाते हैं.
Allah is the one who makes us.
वही दिखाते हैं.
Allah is the one who makes us see.
वही कहलवाते हैं.
Allah is the one who makes us talk.
वही चलाते हैं.
Allah is the one who makes us walk.
वही पकड़वाते हैं.
Allah is the one who makes us grasp.
वही सोचवाते हैं.
Allah is the one who makes us think.
वही जिंदा रखे हुए हैं.
Allah is the one who keeps us alive.
वही सुफात दे हुए हैं.
He is the one who gives all his characteristics.
तो हमारे अंदर जितने फेल नजर आएंगे, काम नजर आएंगे, वो अल्लाह करते हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं करता. और मखलूकात में जितना फेल है वो अल्लाह करते हैं, मखलूक में से कोई चीज कुछ नहीं करती.
The actions that we see, that we are producing these actions, we are not doing them, Allah is doing them. And similarly, any verb, any action that's been done by any living inanimate object is not inherent in that object. Allah is making do that thing.
हम खाते नहीं हैं, हमें खिलाया जाता है.
We don't eat, we are being fed.
हुजूर ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत'अमना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने खिलाया.
The proper dua is all praises to Allah who has fed us.
It's
not the word. Thank you, Allah, for that I ate. No, that's not the word.
आपने खिलाया.
That you fed me.
अल्लाह आपका शुक्रिया है आपने पिलाया.
Thank you, Allah, for giving me something to drink.
पेशाब हम नहीं करते.
We don't go to the bathroom.
हदीस शरीफ में जो दुआ सिखाई गई है वो ये अज़हबा अन्निल अज़ा जिसने पेशाब मुझसे खारिज किया उस पर अल्लाह का शुक्र है मैंने खारिज नहीं किया
We don't urinate The words of the hadith is that all praises to Allah who removed the filth from my body We don't do it Allah is doing it
चाहे बौल हो चाहे बराज हो छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा इस्तिंजा
Either number one or number two
وعافانی اور عافیت بھی دی
and it made it easy for us
اس کے بعد میں ریلیکس ہونا یہ بھی ہم نہیں کرتے
and that quality of relaxation that you feel after going to the bathroom that comes from Allah
ریلیکس بھی وہی کرتے ہیں
Allah is making us
ہم یہ نہیں کہ چلے گندگی نکل گئی ہم ریلیکس ہو گئے نہیں نہیں انہوں نے کیا ریلیکس
not that we go to the bathroom after we're relieved and now we feel better no Allah is making do it
کیونکہ عافانی کا لفظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ وہی ریلیکس کرتے ہیں
because that's the inherent in the translation of the word that Allah is making us feel
چیز کے استعمال سے جو چیز سامنے آئی وہ بھی اور اس کے ریزلٹ اور نتیجے میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی دونوں ادھر ہی منسوب ہوتے ہیں مخلوق کی طرف نہیں ہوتے
The effects of certain things are not in them, but rather both actions are attributed to Allah subhanahu wa ta'ala.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جو پوری کائنات میں کائنات کے ذرے ذرے میں نافذ ہے
This is the system that Allah subhanahu wa ta'ala has established in every atom of the universe.
مخلوق میں نہیں ہے کچھ بھی
It's not a مخلوق
تو اب یہ مگر سامنے ہمارے مخلوق ہے
But apparently that's what we see.
اور کام اور چیزیں مخلوق پر نظر آ رہی ہوتی ہیں
And we see the things that function. Doing things.
اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے
But we don't see the power behind these things. The invisible power, the hand of Allah subhanahu wa ta'ala behind every action.
پیسہ آدمی کو مل جاتا ہے
Someone gets money.
مگر آرام نہیں ملتا
But he is not at peace.
کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ بھی دینا ان کا ہی کام ہے پیسہ دینے کے بعد آرام دینا بھی ان کا ہی کام ہے
Why? Because one is to Allah subhanahu wa ta'ala gives us money but Allah is also he who puts peace and tranquility and comfort in earning that money
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَهِ غَنِي کرتا ہے وَهِ رَاحَتْ پہنچاتا ہے
That's the words in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says he is the one who gives wealth and he is the one who gives relaxation in that wealth
جن لوگوں کو رزق کی بہت تنگی ہے ان کے لیے یہ دعا بہت اسپیشل ہے
This is a good dua for those who need a job or
اَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى 101 مرتبہ پڑھنے کو بولتے ہیں
So read this 100 times
اور جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے مگر سکون نہیں ہے ان کے لیے بھی یہی ہے
And those who have money but are not at peace they should also say this dua
کیونکہ اس میں اَغْنَى کے بعد اَقْنَى کا لفظ ہے
Because it's after wealth then you have peace
اَقْنَى کے دو معنی ہیں
There's two meanings of the word اَقْنَى
ایک افقرا کے معنی ہے کہ وہی غنی کرتا ہے وہی فقیر بناتا ہے
Is that Allah is also he who makes people poor
اور دوسرے معنی یہ ہے کہ وہی غنی کرتا ہے وہی راحت بھی دیتا ہے
The second meaning is he who gives people who makes them wealthy and he also gives them peace
تو راحت ملنا یہ سامان سے تعلق نہیں رکھتا ہے
The quality of being at peace is not attributed to things.
دولت سے تعلق نہیں ہے اس کا.
It's not attributed to wealth.
کسی ملک سے نہیں ہے.
It's not attributed to any country.
کسی status سے نہیں ہے.
Or any status.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر legal status ہو گیا تو مزے آگے شاید.
Some people think, oh, if I'm legal in the country, oh, I am.
وہ کتنی دنیا کس کے بعد legal status ہے مگر مر رہے ہیں, پریشان ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, murder کر لے رہے ہیں, مار لے رہے ہیں.
You see people who are legal, who have citizenship, but you know they're committing murders and they're doing all sorts of crimes. So that is not a criteria for success or failure.
Allah Pak ki hath mein ye sara mamla.
Everything is in Allah's hands.
Hazrat Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alayh farmaya karte the suna.
No, Yusuf rahmatullah alayh used to say
ke jo is alam e asbab mein sabab rakhne ke bawajood musabbib tak nahi pahuncha تو جب اس دنیا سے جائے گا وہاں اسباب بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ مسبب تک کیسے جا پائے گا
He said that if someone living in this world of things, we say asbab, meaning we use means, we're living in the world of means, our mind does not connect us to the one who created the means, then how is it that when we leave this world and go straight to the creator, how are we going to reach the reality of the one who made the means?
وہ اس پسے منظر میں فرمایا کرتے تھے یہ بات
He said, he used to say this in this background.
कि अगर तुम यहाँ अल्लाह के रब होने को नहीं पहचानोगे
तो
कब्र में जब पूछा जाएगा कि मन रब्बू का तो जवाब कहाँ से दे पाओगे? यहाँ रब होने के 50 चीजें तुम्हारे सामने हैं कि रब को पहचान लेते
हैं।
तो जो असबाब के होते हुए मुसब्बिब तक नहीं पहुँचा,
so that those who cannot use the means to get to the one who created the means,
क्योंकि सबब मुसब्बिब के बगैर वजूद में ही नहीं आता,
because the means cannot come into fruition into creation without the creator.
तो इसके होते हुए जब उधर ज़हन नहीं गया,
so but in spite of having all these things, we don't turn towards him.
उसको नहीं पहचाना,
that we don't recognize him.
तो जहाँ सबब ही नहीं होगा, वहाँ कैसे ले सकेगा वो खुदा के
ख़ज़ाने से? So when there is a time in the grave when there is no means, how are we going to recognize him?
तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक का खुश होना इस बात पर है कि उनकी रुबूबियत को पहचाना जाए।
So in order to please Allah Subhanahu wa Ta'ala, we need to recognize His power of providing.
काम अल्लाह का जब पहचाना जाता है तो उसको रुबूबियत का पहचानना कहते हैं।
When we recognize the
अल्लाह तबारक व तआला, उनकी जात को नहीं पहचान सकते आप, उनके काम से ही पहचान सकते हैं, और काम उनका रुबूबियत है।
Because we can't recognize Allah Subhanahu wa Ta'ala, the actual individual, the person of Allah, no one has the means to recognize that. But we recognize Allah Subhanahu wa Ta'ala through His means, through His powers. So we recognize His powers, then we recognize who He is.
इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है।
That's why the word is all praise to Allah, who is the provider of all the world.
रब्बिल आलमीन इसलिए कहा गया कि जो भी तुम पहचानोगे तो रब से पहचानोगे, रब को ही पहचानोगे पहले, रब से ही अल्लाह को पहचानोगे, वरना नहीं पहचान में आएगा वो।
Because that is the initial thing that our thoughts go to. When you recognize the provider of the means, then you when you recognize the means, you recognize the provider of the means.
इसीलिए इस दुनिया में आने से पहले रुबूबियत का तारुफ कराया।
That's why we were introduced to the power of Allah as the provider before even coming onto this planet.
अलस्तु बिरब्बिकुम।
That when we were out in the world, Allah asked us, "Am I not your Lord?"
दुनिया में आने के बाद में रुबूबियत का सबक दिया।
And then when we came onto this planet, Allah gave us means for provision.
फरमाया इसको मजबूत पकड़ना।
And he said, "Oh, hold fast to this."
इन الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا फिर जम गए।
And hold fast to this concept that Allah is the provider.
इस दुनिया से जाने के बाद सबसे पहला सवाल मन रब्बू का
है,
क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी तरीके से बंदा अगर समझना चाहे वो रुबूबियत से समझेगा।
Because in order to recognize Allah Subhanahu wa Ta'ala, the best way to recognize him is through his power of providing.
रुबूबियत से आगे जो है वो अल्लाह की जात शुरू होती है, वो जात को अपन नहीं पकड़ सकते डायरेक्ट।
Because beyond this power of providing is the actual zat of Allah Subhanahu wa Ta'ala. We cannot understand that.
Usko sufi apni zuban mein martabe wahdat kehte hain.
And there is a whole
ahadiyat bhi kehte hain.
There's a whole advanced degree of understanding.
To ye hai ki is duniya mein iski mashq hona hai.
So that's why we practice this on this planet.
Isko kehte hain Allah tbarak wa taala ki rububiyat ki maarifat.
That's what's called to recognize the power of the provision of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Is rububiyat ki maarifat se tauheed ka ilm hota hai.
And through this power of the provision of Allah Subhanahu wa Ta'ala, we recognize the power of the oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Agar ye pata chale ki aap bhi kuch kar rahe hain, aap bhi 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 kar rahe hain, to tauheed kahan hui?
Right, because if you say, okay, he's giving me something, he's giving me something, he's giving me something, then how can we be one? If multiple people are the providers,
suraj kuch kar raha hai, chand kuch kar raha hai, ek kahan hua?
If the sun is doing something and the moon is something, then how can they be one?
Badal kuch kar raha, pani kuch kar raha, ek kahan hua?
If the clouds have some power, the water has some power, then how can they be one?
Zameen kuch kar rahi, aasman kuch kar raha, ek kahan hua?
If the earth is doing something, the sky is doing something, how can they be one?
Rububiyat ki maarifat se tauheed hasil hoti hai.
Through the recognition of the provision of Allah Subhanahu wa Ta'ala, we recognize the oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iqrar-e-tauheed se kalma shuru hota hai.
And by this declaration of the oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala, that's when the kalma starts.
इस इकरार तौहीद और मारिफत रुबूबियत के साथ में दीन शुरू होता है।
एंड थ्रू दिस डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला एंड द रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविजन ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला दैट्स व्हेन द दैट्स हाउ वी स्टार्ट ऑफ ऑन आवर ट्रैक।
इसलिए दावत की बुनियाद अल्लाह पाक की अजमत और बड़ाई है।
That's why the foundation of da'wat is the greatness of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah ki qudrat hai.
The power of Allah.
Allah ki rububiyat hai.
The provision of Allah.
Allah ki hifazat hai.
The protection of Allah.
Allah pak ki razzaqiyat hai.
The fact that he gives to us.
Nafa aur nuksan ka unke haath mein dekhna hai.
All success and failure is in his hands.
Izzat aur zillat ka unke haath mein dekhna hai.
Respect and honor and disgrace is in his hands.
Maut aur hayat ka unke haath mein dekhna hai.
Life and death is in Allah's hands.
Ghina aur faqr ka unke haath mein dekhna hai.
Poverty and wealth is in Allah's hands.
Tandurusti aur bimari ka unke haath mein
دیکھنا ہے
health and sickness is in Allah's hands
عروج اور زوال کا قوموں کے ان کے ہاتھ میں دیکھنا ہے
the rise and fall of nation is in Allah's hands
پورے کام
Everything.
کرنے والی ذات صرف ایک اللہ
There's only one doer and that's Allah
تو یہ چیز کی مشق ہونا ہے
we need to practice that
یہ ہے کلمے پر محنت کرنا
this is what we call the effort of kalima
لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا حاصل ہونا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے دل کے اندر آ جائے
this is what we say through this effort the reality of this enters our hearts
بتائیے کتنی محنت کی ضرورت ہے
how much effort do we need to make
اور پوری انسانیت کو اس سے واقف کرانا ہے
And we have to introduce this to all of mankind.
اور اسپیشل مسلمانوں کو اس سے واقف کرانا ہے جو بھول گئے اس سبق کو
And especially those of the Muslims who forgot this.
بتائیے کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے
So how much effort do we need to make?
اور جتنے بھی لوگوں تک آپ جائیں گے اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو جاتے دوسرے دن
And no matter how many people you make an effort, they're more and more every day.
ظاہر ہے کہ روزانہ لاکھوں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی اعتبار سے روزانہ بڑے ہو رہے ہیں اور سب جاہل پیدا ہوتے ہیں غافل پیدا ہوتے ہیں اگر ماحول ملا ہے بچپن سے تو کچھ ملا ہے نہیں ملا تو بالکل خالی ہے
If someone is giving some environment while he's young, then maybe. But if not, otherwise, they have no
right. اور خالی بھی نہیں ہے بلکہ اس میں باطل بھر گیا ہے
And not only are they devoid of any proper education, but they're giving misinformation.
ایسا بھی نہیں ہے زمین خالی ہے آپ جا کے پودے لگا دو
It's not like it's an empty land, you put some seeds in it.
نہیں اس کے اندر وہ سیڈ ڈالنے کی ضرورت ہے جو گھاس وہ مارتی ہے نا گھاس میں کیا بولتے ہیں ہاں ویٹ کو ڈالنے کی ضرورت ہے
you have to put those special types of seeds in there that are how can you say resistant to the weeds
کیونکہ جھاڑ جھنکار کیڑے مکوڑے 50,000 چیزیں گروتھ ہو چکی ہیں ماحول نہیں ملنے کی وجہ سے
so it's not just an empty field it's a field filled with weeds and rodents and every different things that are there
اس لیے ہمارے دلوں کی زمین میں پاکی نہیں ہے پلین پنا نہیں ہے گندگی بھر گئی
that's why the realm of our hearts is not pure it's been diluted with filth
اور گندگی کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ معرفت آتی نہ محبت آتی
and Allah subhanahu wa ta'ala does not enter those hearts and you cannot recognize and enter the greatness you cannot come to those hearts that are filled with
نہ رسول کی محبت آتی نہ ان کی عظمت و معرفت اترتی
nor can you recognize the service of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم nor the khidmat that he's done for us
اس کو مجاہدے میں ڈال کے جیسے کہ زمین کو مجاہدے میں ڈال کے اس کو صاف کیا جاتا
and just as you make an effort on the land to clean the land similarly you need to make an effort on the heart to cleanse the heart
اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا پڑتا ہے
that's why you need to take it out in the path of Allah
پھر اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے
and to make an effort on it
اور نیک نیتی چاہیے ہوتی ہے
with sincerity
کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں کر سکتے
no other worldly
کیونکہ جس کے لیے یہ کرنا ہے اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے
because whoever you're doing it for he knows
اس کو دل کے ارادے معلوم ہیں
he knows your intentions in the heart
اس کو خواہش معلوم ہے
he knows your wishes
اس کو جذبات معلوم
ہے he knows your desires
وہ علیم بذات الصدور ہے
he knows what's inside our hearts
وہ علام الغیوب ہے
he's the seer of the unseen
اس لیے دنیا والوں کے جیسا سلوک نہیں کر سکتے کہ میں تو محض آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تعلق بنانا چاہ رہا ہوں
just as you could fool the other people that oh I'm doing it for your pleasure
وہاں یہ ہے کہ وہ پہلے دل ہی کو دیکھتے ہیں
you can't fool Allah the first thing Allah looks at is our heart
اسی لیے دعوت کی مبارک محنت کی بنیاد کس پر ہے اخلاص پر ہے
that's why the foundation of the effort of dawah is ikhlas
اللہ اس کے بغیر خوش ہوتا ہی نہیں
Allah cannot be happy never be happy without ikhlas
خوش ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی کے اخلاص اگر نہ ہو انسان میں
there's no concept of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala without ikhlas
اس لیے ہر عمل میں کوئی دنیا کی غرض نہیں ہونا
that's why in every action we should not have any worldly benefit in
کوئی مصلحتیں نہیں ہونا
no other یعنی اغراض
عمل کے ساتھ مال متعلق نہیں رہنا
nothing to get some worldly
عزت متعلق نہیں رہنا
or to honor
جان متعلق نہیں رہنا
or to get other
نفع اور مصلحتیں متعلق نہیں ہونا
or to get some benefits from
آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے
so can you imagine how much effort needs to be made
اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر دل کی گندگی کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے
that's why one of the purpose in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is to purify our hearts
جب یہ دل کے اندر سے گندگی نکلتی ہے دنیا کی باطل محبت نکلتی ہے نظر غیر اللہ کے اوپر سے ہٹتی ہے اور اللہ پر جانا شروع ہوتی ہے پھر یہ دل پاک ہوتا ہے
So when we remove this filth from our hearts and remove the dirt of the worldly things, remove our vision of turning towards the makhluk for help, then the reality of the love of Allah comes into our hearts.
یہ چیز میرے دوستو برسہا برس سے ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے غلطی والی.
And this has been generations that this has gone and entered and
उसूलन जितना टाइम इसको हम खराबी से भरते रहें उतना टाइम खराबी निकालने के वास्ते लगाना चाहिए.
Logically, you should spend at least that much time that it took to unpurify our hearts. We should spend the same amount of time to purify the heart.
मगर ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि उसको साफ करने उतना टाइम नहीं लगता.
But it's the blessing of Allah Subhanahu wa Taala that it doesn't take that much time to purify the heart.
जैसे घर कचरे से भर गया है.
Just as the house is filled with dirt.
मगर घर के कचरे से भरने के लिए टाइम लगा है.
So it takes time.
वैक्यूम चलाने टाइम नहीं लगता
ज्यादा. It doesn't take time to just vacuum.
ये इसलिए चार महीने में हो जाता है काम.
That's what you do in the 4 months.
वरना तो अपन तो चार साल ने 40 साल से बिगाड़ते हुए आ रहे हैं मसले को.
But if you look at it in reality, not just 4 years, 40 years, we spend our whole lifetime.
उससे भी ज्यादा, उससे भी कम.
And more or less.
फिर बिगाड़ बिगाड़ के नौयत है.
And there's different types of filth that enters our heart.
कोई 10 मिनट में इतना ज्यादा बिगाड़ लेता है कि दूसरा 10 दिनों में भी नहीं बिगाड़ता.
Some people they can mess up in 10 minutes, but other people can't do in 10 days.
कोई इलाका कोई जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे 10 साल रहे तो उतने नहीं बिगड़ते. कोई जगह ऐसी होती है कि वहाँ 10 घंटे रहे तो उससे ज्यादा बिगड़ जाते.
There are some places in this world if you live for 10 years you're not messed up as much as if you go for 10 hours in another place.
समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा
हूँ.
जगह का भी फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क पड़ता है, हालात का फर्क पड़ता है, सोहबतों का फर्क पड़ता है, जज्बात का फर्क पड़ता है, अंदर की बीमारियों का फर्क पड़ता है, हिर्सोतमा का फर्क पड़ता है, लालच और बेहयाई का फर्क पड़ता है.
Greed and the filth that we see force around us that has an effect on us.
उस एतबार से देखा जाए तो जितना खराबी में हमने वक्त लगाया उतना अपने कल्ब को साफ करने में लगाना था, मगर ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने सही रास्ते पर चलने वाले के लिए खुशखबरी दी है कि तुम अगर मेरी तरफ चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊँगा, तुम एक कदम आओगे तो मैं दो कदम आऊँगा, तुम अगर दो कदम चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा. ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि तू इरादा कर और आगे बढ़, उसके बाद मेरी मदद आ जाएगी.
That it needs to purify our hearts. Allah Subhanahu wa Taala, you make a sincere intention. You come one step, I'll come with you two steps. You come with, you walk towards me, I'll run towards you. As long as you come with towards me sincerity, I will take care of you.
मेरे दोस्तों, इस काम को करने के लिए हमें तय करना है कि इस पर हमें मेहनत करना है.
So we need to decide that I need to make this effort a part of my life.
एक अपनी जात को उन्वान बना के और एक सारी मखलूक को उन्वान बना के.
One keeping myself in mind, the other keeping the rest of mankind.
इसलिए कि जब तक मेरा ज़हन नहीं बनेगा मैं सोचूंगा नहीं कि ये करूंगा कैसे मैं.
Because until I make up my mind, I'm not going to be able to do it.
ज़हन ऐसे बनाना है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो चाहे कुछ भी किया हो अपने को मैंने बर्बाद किया.
We should explain to ourselves, tell ourselves that if I've done everything else but I haven't done this effort, I'm a failure.
बहुत पैसे बना लिया.
Oh, I made so much money.
आदमी तो जैसा का वैसा रह गया.
But person is still the same.
अच्छा मकान बना लिया.
Oh,
फायदा क्या हुआ? आदमी तो जैसा का वैसा रह गया.
So what? You're still the same.
बेहतरीन कपड़े उसने तैयार कर लिए, बड़ी अच्छी गाड़ी उसने खरीद ली, क्या फायदा है? वो तो आदमी तो जैसे का वैसा रह गया.
Oh, I've got these expensive clothes, or I've got these fancy cars, but so what? As a human, you're still the same.
असल मसला मेरे दोस्तों ये है कि कुछ भी हमने कर लिया लेकिन अल्लाह के पास जाने के लिए तैयारी नहीं की और उसके लिए मेहनत मुजाहिदे पर अपने को तैयार नहीं किया तो हमने अपना नुकसान कर लिया.
The actual reality is, my dear brothers, no matter what we've done as far as the world is concerned, if we have not prepared ourselves to meet Allah Subhanahu wa Taala, then we've done nothing.
और अपने बीवी बच्चों का भी यही हाल है.
And same thing for our wife and children.
इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि असल नुकसान तो लोगों का और लोगों की बीवी बच्चों का वो है जो कयामत में उनका नुकसान हो गया.
And that's why the Quran is saying the actual loss that people will have is what in the hereafter will be the loss attributed to us due to our wives and children.
क्यों? इस वास्ते कि वहाँ अगर आदमी बन के नहीं गया, बिगड़ के चले गया, उसकी ज़िंदगी बिगड़ गई है तो कुरान पाक में यह है कि ऊपर भी आग और नीचे भी आग.
Why? Because if he has not made the effort here, then when informed through the ayat in the Quran, there'll be fire above him and fire beneath him.
आदमी बिल्कुल सैंडविच की तरह रहेगा, ऊपर भी आग नीचे भी आग.
He'll be like a sandwich. You know, fire above him, fire beneath him.
और मरेगा भी नहीं.
And he won't die.
Back भी नहीं हो जाएगा. बैग करते ना ओवन में रख के अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया है मेरे दोस्त, बस अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाए कि वहां किसी आदमी को मौत नहीं आएगी.
That's the system Allah has set up that no one will die.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. एक मर्तबा खाल जल जाएगी तो खाल बदल दी जाएगी.
That one time that the skin has been burnt off, the flesh is burnt, another new flesh will be made.
एक मर्तबा पेट के अंदर की आंतें कट-कट के निकल जाएंगी पाखाने के रास्ते से, दोबारा फिर बन जाएंगी.
One time that your intestines have been chopped up and taken out, new intestines will be made, so the same thing will be repeated.
एक मर्तबा कल्ले चीर दिए जाएंगे दरातियों से, फिर सही हो जाएंगे.
One time your jaws have been ripped open by claws, they'll be made whole again and be done again.
एक मर्तबा पत्थर को कुचल दिया जाएगा मगर फिर दोबारा सही हो जाएगा.
One time your head is smashed by a boulder, but it'll be made whole again, so it'll be done again.
एक सिलसिला है लामुतनाही.
And that'll be continuous.
कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं मेरे भाई हम?
Who can sustain this?
कौन है जो इसको बर्दाश्त कर सकता
है? Who has the power to put up with this?
नहीं, कोई किसी की बर्दाश्त की बात.
No one can do that.
हम तो वैसे भी कमजोर लोग हैं.
We're all weak.
हम तो वैसे भी मजों के आदी हैं.
We are all used to
आराम के आदी हैं.
And comforts.
ना सर्दी बर्दाश्त करने के आदी, ना गर्मी बर्दाश्त करने के आदी.
We can't put up with the cold or the heat.
हम बगैर गद्दे के तो सो भी नहीं सकते.
We can't sleep without a mattress.
आप अंदाजा फरमाइए कि जो जितना दुनिया में राहत का आराम का आदी होता है उसकी कैपेसिटी उतनी कम हो जाती है आखिरत की बर्दाश्त के एतबार से.
So the more you are used to comfort in this world, the less you will be able to put up with the hardships of the life hereafter.
इस वजह से हमको तो किसी तरीके से बचना ही बचना है जहन्नम से.
That's why we need to definitely make an effort to save ourselves from the fire of hell.
जो भी कीमत इसकी देनी पड़े.
Whatever we have to give.
कितना भी लंबा मुजाहिदा करना पड़े.
Whatever effort we have to make.
कितना भी पैसे लगाने पड़े.
Whatever money we have to spend.
कितना भी वक्त देना पड़े.
Whatever time we have to give.
करना ही करना है मेरे.
We have to do it.
हम अपने ज़हन को तैयार करें कि नहीं. ए नफ्स, तुझे मानना होगा कि तुझे ये काम करना है.
We have to prepare ourselves and tell ourselves, look, hey, you have to do it. You gotta get it done.
जैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे तो अल्लाह पाक फिर सुझा ही देगा. अल्लाह ताला रास्ते बताएगा कि किस तरीके से तू अपने आप को सही कर सकता है.
And the more we prepare ourselves, Allah Subhanahu wa Taala open the ways for us and show us and guide us on how to make ourselves better.
वरना मसरूफियत तो मेरे दोस्तों चलती रहेगी.
Otherwise, everybody's busy.
और जिस चीज में हम मशगूल हैं वो चीज हमारे आप को नहीं बना रही.
And whatever we're busy in is not making us success.
वो बना रही है सामानों को.
It's making things.
हमारी सलाहियत भी सामान बनाने में ही लग गई.
Our capacities and our efforts are put into making things.
जो चीजें अल्लाह ने हमारे अंदर रखी थी हमारे अपने बनाने और हमारी आखिरत बनाने के लिए, उसको भी हमने सामान बनाने पे लगा दिया.
The capacity that Allah SWT gave us to make ourselves, to make our characteristics, we've invested that capacity in making things.
अगर हम अपनी सलाहियत से पैसे ज्यादा बनाते हैं तो अपने को बहुत ही समझदार समझते हैं.
If we think, oh, I use my intellect and my strength to make more money, we think, oh, I'm very smart.
वो एक घंटे में अगर $200 मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं बहुत ही सलाहियत वाला हूँ.
Think, oh, I'm making $200 an hour. I must be very special.
मैं बहुत अपनी उम्र को, अपने वक्त को कीमती बना रहा हूँ.
I'm using my time wisely.
इस आदमी से ज़्यादा अहमक और बेवकूफ कोई नहीं.
SubhanAllah. No one more stupid than this person.
इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती है. उसके 10 मिनट, उसका एक घंटा इतना सस्ता है कि उससे $200 बने.
इसे value of life is such that you make $200 in one hour.
वो तो मेरे दोस्तों जन्नत हासिल करने की, एक घंटे में तो कितनी जन्नत मिल जाती है.
You should spend that to make how much jannat you can make for life.
वो तो जहन्नम से बचने के लिए है.
To protect yourself from jahannam.
असल ये हमें ये बताया गया
है,
अल्लाह ने इल्म ये दिया है, क्योंकि वही के इल्म में ये बातें हैं. इसलिए जो सामान हम बनाते हैं अपनी सलाहियतों से वगैरह से, ये दुनिया कमाने के वास्ते बकदरे जरूरत उसमें मशगूल होने की शरीयत इजाजत देती है, लेकिन हमारा अपना जहन भी होना कि हम अपने आप को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं. पहचानना है कि हमारी उम्र का जिया क्या है, जाय होना क्या है और उसका कीमती बनना क्या है.
Yes, Shariat has given us concession to you to spend some time to fulfill your necessities, but we should keep in mind that where am I investing my capacities, my time and energy and intellect, where am I using that for, to increase myself in life hereafter or just for this world?
Huzur ka ummati hidayat ke liye.
Every ummat of Nabi sallallahu alaihi wasallam is made for hidayat.
Nabi ka faiz lene ke liye.
To gain the benefits of Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Usko absorb karke apne andar utarne ke liye.
And to absorb that into our bodies.
Aur usko dusre insano mein muntakil karne ke liye.
And to convey that to the rest of mankind.
Aur wo aisi cheez hai ki uske zariye se Allah taala khush hote hain.
And that's something that pleases Allah.
Aur jab wo khush hote hain to Allah pak apni nematon ke khazane se hamesha ke liye jodte hain.
And when Allah is happy, Allah will connect us with everlasting blessings.
Agar ek ghante में कोई ऐसा काम हुआ जिससे वो खुश हुए और उन्होंने अपनी नियमत के खजाने से जोड़ा, वो एक घंटा कीमती बना.
if you've invested 1 hour in such a way that Allah is happy and you connected Him with the everlasting pleasure in life or after, that's 1 hour.
आप कह सकते हैं जब आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने अपना वक्त कीमती बनाया.
Yes, then you can say I've invested 1 hour.
क्योंकि उससे जो चीज हासिल होगी वो हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए हासिल होगी.
Because what you gained in that 1 hour is better than 100,000 million years.
इसलिए अल्लाह पाक ने जो हमें सलाहियत दी है वो जो हमारे पास जान है वो जो हमें माल अल्लाह ने दिया है वो दीन सीखने और सिखाने के लिए.
Because the every time, energy and wealth Allah has given us is to learn deen and to spread deen.
वो दीन की मेहनत के लिए.
For the effort of deen.
वो दावत इल्लाह के लिए है.
To invite people towards Allah.
वो दावत के मैदानों में चलने फिरने के लिए.
And to enter into the realm of da'wah.
हमारा जिस्म दावत के रास्ते में अपने आप को थकाने के लिए.
Our body is given to tire itself for the sake of deen.
अल्लाह के रास्ते में अपने आप को जख्मी करने के लिए.
To make yourself wounded in the path of Allah.
और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान खत्म करने के लिए.
And to finish your life in the path of Allah.
उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी को अल्लाह के रास्ते में अपनी जान खत्म करने की ख्वाहिश न हो उस आदमी के सोए खातिमा का अंदेशा है.
The elders have written that somebody does not have a desire in his life, in his heart, that he wants to end his life in the path of Allah Subhanahu wa Taala, there is a danger that he may die in a bad way.
हर ईमान वाले के दिल में ये जज्बा होना, ये तमन्ना होना कि अगर मौका मिल गया मुझे तो मैं अपनी पूरी जान अल्लाह के लिए लगा दूंगा.
Every moment should have this wish and desire in his heart that if I have the opportunity, I will give my life for the sake of Allah.
और जिस आदमी को मौका मिल गया वो कामयाब हो गया.
And whoever is given this opportunity, he is successful.
इसलिए सहाबा का जब इंतकाल होता अल्लाह के रास्ते में तो उनकी जुबान से निकलता फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया.
That's why when sahaba kiram used to be shaheed in the path of Allah Subhanahu wa Taala, they would say, I swear by Allah that I have succeeded.
क्यों कसम क्यों खाते थे वो?
Why would they swear?
बात यह है कि जब तक शहादत नहीं हुई थी, जान नहीं जा रही थी, उस वक्त तक शोर नहीं थे कि पता नहीं किस हालत में जान जाएगी.
Because they weren't sure until the actual time of death, they were still in doubt. But once they're dying, then they say, "Yes, now I'm sure. Now I can swear."
इसलिए कहते हैं, "फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया."
I swear by the Lord of the Kaaba, I'm successful.
खुशी-खुशी अल्लाह के दरबार में पहुंच जाते.
And they would be happy to present themselves in the court of Allah.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो याद फरमाया, हुजूर ने किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, इसकी की कि मैं अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं.
Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam didn't make any worldly wishes and desires. He said, I have the desire that I would go and give my life for the sake of Allah. Then I would die and I would be raised again, I would give my life for the sake of Allah. And I would be raised again, give my life for the sake of Allah. To give multiple lives for the sake of Allah.
Hamari jaan aur maal Allah ke deen ki hayat ke liye.
Our life and energy and wealth is for the rejuvenation
Allah ke deen ko zinda karne ke liye,
to renew deen,
Allah ke deen par amal karne ke liye,
to practice deen,
Allah ko yaad karne ke liye,
to remember Allah,
Allah se mohabbat karne ke liye,
to love Allah,
Allah ko khush karne ke liye,
to please him.
Siwaye khush karne ke aur koi sabil nahi hai mere
dost. There's no other way besides him.
Koi aur sabil nahi hai ki banda Allah se jod paida kar sake, kyunki bande mein Allah mein koi jod nahi hai.
There's no other way to connect ourselves with Allah Subhanahu wa Taala besides this.
क्यों? इस वास्ते कि बंदे में अल्लाह में कोई जोड़ नहीं है.
Because there's no other way that we can connect to Allah Subhanahu wa Taala.
अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे तो यही एक रास्ता है बंदे का अल्लाह से जुड़ने का.
By pleasing him, that's the only way to connect with him.
और वो खुश होते हैं मेरे दोस्तों उनके दीन से.
And Allah is happy when we practice deen.
उनके दीन की मेहनत से.
By the effort of deen.
उनके दीन पर और उनके दीन की मेहनत पर मुजाहिदा करने से.
To strive for him and for the effort of
उस पर
his
वक्त और सलाहियतों के लगाने से.
To give our time and effort for his deen.
उस पर जान और माल के लगाने से.
To give our wealth and time for his deen.
उस पर जान और माल लगाने वालों की खिदमत करने और उनको सहारा से सपोर्ट करने से.
And to support those who give their time and effort for his deen.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا.
Those who believe and those who and give their time and wealth for service of deen, and those who help those who give their time and wealth for service of deen, those are the ones who are successful.
चाहे वो ऐसे हों चाहे वो वैसे हों, दोनों सूरतों में अल्लाह पाक ने फरमाया उलाइक हुमुल मुमिनूना हक्का, ये हैं सच्चे ईमान वाले.
This is a sign of true iman, either those who go in the path of Allah or help those in the path of Allah. That is a sign of true iman.
इसलिए ये चीज हिम्मत करने की है.
This we need to take up.
और ये चीज इरादा करने की है.
We need to make intention.
और ये अल्लाह तबारक व तआला से मनवाने की है.
And we need to convince Allah Subhanahu wa
Taala. और इंतहाई आजिजी और जिल्लत और तजर्रुजारी के साथ में अल्लाह पाक से मांगना है कि अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए.
And with real humility and sincerity, we need to ask Allah to accept us.
और डरना है कि कहीं किसी नहुसत की वजह से मुझे कबूल करने से महरूम न कर दिया जाए.
And to fear that maybe due to something that I have done, I'll be mahroom of the mercy of Allah.
जो आदमी डरता है, वो अल्लाह से माफी मांगता है.
He who fears it, then he will repent to Allah.
और जो आदमी माफी मांगता है, अल्लाह पाक उससे खुश होता है.
And you who ask forgiveness, Allah is happy.
इस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा. तो माफी मांगो, वो बहुत माफ करने वाला है.
If you ask forgiveness, so Allah, He is He who gives.
और जब वो माफ कर देते हैं तो फिर वो नया मामला शुरू करते हैं.
And when he forgives, he starts again.
अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु. जो तो माफी मांगता है ऐसे ही जैसे किया ही उसने.
Someone who repents from a sin is as if he hasn't committed anything.
बिल्कुल नया एग्रीमेंट शुरू कर देते
हैं. A new contract has started.
अजीब मामला, हालांकि वो जानते हैं.
Even though Allah knows.
फ्यूचर को भी जानते हैं.
He knows the future.
ये कमबख्त कल क्या करने वाला है मालूम है उनको.
He knows what we're going to do tomorrow.
मगर वो कहते हैं कि जब इसने सफाई कर ली तो मैं क्यों, मैं भी साफ.
He said, well, at least he's sincere, at least he's trying. Okay, from my end, it's clear.
हाँ, अन्ना इंद्रजन्य अब्दी भी. मेरा बंदा मेरे साथ जैसे गुमान करता, मैं उसके साथ वैसा.
So my relationship with is my slaves as he his expectations.
इसलिए अल्लाह से ज़्यादा कोई शफीक नहीं है मेरे दोस्त.
No one is more shafiq than Allah.
अल्लाह से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं है बंदे.
No one is more generous than Allah.
ये चीजें बताती हैं कि अल्लाह पाक सिवाय शफकत के और चाह क्या रहे हैं हमारे साथ.
These are things that show us that besides the generosity of Allah, what does he want from us?
सिवाय रहम के कुछ इरादा ही नहीं है उनका.
That he wants graciousness from us.
और अपनी जनरल पॉलिसी यही बनाई हुई है कि रहमत ही गालिब रहेगी. सबकत रहमती अला गदबी.
And that's a general policy that my generosity and my graciousness, you know, overtakes my punishment.
इसलिए जो उन्होंने जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा को दी है मेरे दोस्तों, वो हमारे लिए मेहरबानी है अल्लाह पाक.
That's why whatever responsibility Allah has given us, that is the source of mercy for us.
वो उनके खजानों से लेने के लिए.
That is the means of getting from the treasures of Allah.
वो रास्ते बता रहे हैं कि देखो इस रास्ते से तुम मेरे खजानों से ले सकते हो.
He's telling us this is how you get from my treasures.
इसलिए हम इरादा करें अल्लाह की ज़ात आली पे भरोसा करके.
So we make an intention relying on the treasures of Allah.
और ये इरादा करें कि दुनिया के कोने कोने में मैं जाऊँगा.
And we make the intention that I will go to every corner of the.
ज़्यादा से ज़्यादा माल लगाऊँगा.
And I will spend as much as I can.
ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाऊँगा.
I will give as much time as I can.
ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियतें लगाऊँगा.
I will spend as much energy.
और एक एक इंसान से मिल के उस तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाऊँगा.
And I will try to convince everybody about the way to.
और अल्लाह के रास्ते में उस वक्त तक लगा रहूँगा जब तक मेरा काम न बन जाए.
And I will keep going the path of Allah SWT until I'm done.
जब तक अल्लाह मुझसे राजी न हो जाए.
Until Allah is happy with me.
जब तक अल्लाह की मारिफत मुझे न मिल जाए.
Until I recognize Allah.
जब तक अल्लाह की मोहब्बत मुझे न मिल जाए.
Until I love Allah.
जब तक अल्लाह पाक के खुश होने और राजी होने के आसार जाहिर न हो जाए.
Until I don't see the signs of Allah being happy with me.
उलमा ने फरमाया कि औलिया अल्लाह को अल्लाह के राजी होने के आसार दिखा दिए जाते हैं.
And that's what, you know, the scholars, they say some special people are shown the signs to which Allah is happy with us.
इसलिए मेरे दोस्तों चार चार महीने के लिए इरादा करना है.
That's what we make intention for 4 months.
हाँ, निजामुद्दीन जाना है.
Go to Nizamuddin.
वहाँ जाके वहाँ से चार चार महीने का इरादा करना.
And then go there and make intention for 4 months.
और जो किसी वजह से नहीं पहुँच सकते इंडिया को, तो जो जहाँ है वहीं से चार चार महीने का इरादा करना.
And if you can't go to India for whatever reason, then wherever you are.
और एक मरतबा चार महीने लगा चुके हैं तो उसको काफी नहीं समझना है.
And don't think you spent 4 months one time, that's enough.
मुस्तकिल काम करना है मेरे दोस्त.
Continuous effort.
जिंदगी भर का ये काम है.
A lifelong effort.
हाँ, जिंदगी भर हमें लगे ही रहना है इसमें.
We're going to be connected this.
और इसीलिए ऐसे बैलेंस के साथ में लगना है कि हम इसको निभा सके, संभाल सके.
And we should balance in such a way that we continue this for the rest of our life.
हाँ, बोर होके एकदम छोड़ देना ऐसे भी बात नहीं हो.
Don't think, oh, I'm tired of this, I'm bored of this. No.
जोश में आके एक बार थोड़ा सा लगा दिया, उसके बाद खामोश बैठ गए. इससे नहीं बनता काम.
Be very emotional, energetic, and spend some time, and then the rest of your life.
हाँ, जैसे हम लोग करते हैं कि जब जोश आ गया तो एकदम तीन चार पारे कुरान शरीफ लेके बैठ जाएंगे मस्जिद में सुबह से लेकर जोर तक, फिर उसके बाद 6 महीने तक कुरान शरीफ भी नहीं उठाते.
It's like we see some people, you know, one day they get up and they read 3-4 पारे juz of the Quran, and the next 6 months you don't see them touching the Quran.
ये तरीका नहीं है.
That's not the right way.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस पर पाबंदी हो अल्लाह को वो अमल पसंद होता है. इसलिए अल्लाह के रास्ते में कंटिन्यू जाना.
That's what you are consistently.
गश्ते कंटिन्यू करना.
Go and do gush consistently.
तालीम कंटिन्यू करना.
Do तालीम consistently.
तस्बीहात कंटिन्यू करना.
Do तस्बीहात consistently.
सारे काम जो दीन की मेहनत की लाइन से हों या दीन की अमाल की लाइन के, उनमें पाबंदी चाहिए.
Everything for, as far as the effort of deen and the ways of deen, we need consistency.
इसलिए मेरे दोस्तों हिम्मत करो अल्लाह की ज़ात आली पे भरोसा करो.
That's why, you know, make an intention relying on Allah.
सब तैयार हैं इंशाअल्लाह.
Ready,
अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आसान फरमाए, बरकत फरमाए. इरादे करो.
Please give.